ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة روم آیت نمبر 20-27 ہمارا آج کا گول ہے اور گھر بچاؤ سیریز میں سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ اس دواجی زندگی یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق آج انشاءاللہ ہم ان آیات کا خلاصہ کر کے پھر اس پہ ایکسٹرا سے بات کریں گے کہ گھروں کو پرسکون کیسے کیا جائے اور خاص طور پہ جب دین زندگی میں آ جاتا ہے تو بعض لوگ یہ بدگمانی پھیلا دیتے ہیں یا اس بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گھروں سے جھگڑے نہیں جاتے تو کیا اللہ کا دین جھگڑے کرواتا ہے کیا دیندار خواتین کے گھر اور بچے اگنور ہوتے ہیں ایسے بہت سارے سوالات آپ کے بھی ذہنوں میں اٹھتے ہوں گے اگر آپ نے اس دعوت کے میدان میں قدم رکھا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ہلکا پھلکا سا سیشن آپ کے اور میرے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن ہوگا ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ان آیات کو ہم دیکھیں گے یعنی تفسیر نہیں لیکن تفسیری ترجمہ کے جس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا خطاب کرتے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ پھر بے شک یا اچانک تم بشر بن کے تنتشرون تم پھیل جاتے ہو غور کیجئے ذرا اس ایک آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس کی تخلیق یاد دلاتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم ان خلقکم من ذہب کہ ہم نے تم کو سونے سے پیدا کیا من فضہ چاندی سے پیدا کیا तुम्हें क्रिस्टल से पैदा किया, शीशे से पैदा किया, हकीकत की तरफ इशारा कर दिया कि ऐ इंसान, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। ज़ाहिर देखा जाए तो कीमती चीज़ों के एतबार से मिट्टी कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं होती। मिट्टी का बना हुआ बर्तन सस्ता होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की ना हुई हो वहाँ भी मिल जाता है। और अगर आज की दुनिया में झांक कर देखें तो बहुत सारे लोग अब खूबसूरत बर्तनों को छोड़ छोड़ कर मिट्टी के बर्तनों में पकाने को फिर रिवाज देने लगे और मिट्टी को नमो और ग्रोथ की निशानी बनाने लगे। ये तो जब बहुत सारे तजुर्बे कर लिए तो ये बात समझ आई, लेकिन इससे कुछ अरसा पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि मिट्टी के बर्तनों में तो गरीब लोग खाते हैं और देहातों वाले खाते हैं, लेकिन आज भी मिट्टी की हंडिया में पका हुआ खाना चंद मिनट में इंस्टेंटली झटपट तैयार खानों से ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से क्यों बनाया, ये हालांकि हमारे इस मौजू से मुतल्लिक नहीं है, लेकिन इसका गहरा ताल्लुक है आज के इस टॉपिक के साथ। एक बीवी के मिजाज में अगर मिट्टी वाली खूबियाँ हों तो वो अपने शौहर के लिए एक एसेट, एक ख़जाना हो सकती है। और अगर एक शौहर का मिजाज मिट्टी वाला मिजाज हो तो बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी बदमजगियाँ घर में होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म ना भी हों तो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर औरत और मर्द के मिजाज में आग हो, जैसे कि शैतान का दावा था कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, आदम को तो अल्लाह तूने मिट्टी से बनाया और मिट्टी बड़ी अदना है और आग बड़ी आला है, तो याद रखिए कि फिर झगड़े ज़्यादा होते। मिजाज में मिट्टी वाली खूबियाँ लाएं, बस पहली बात ये अपने लिए लिखें। एक अच्छी बीवी है और अगर आप एक मर्द हैं और आप एक अच्छे शौहर बनना चाहते हैं तो आपका मिजाज मिट्टी वाला होना चाहिए। मिट्टी के मिजाज में क्या है, सबसे पहले देखिए कि मिट्टी में नमू है। एक दाना बीज का आप मिट्टी में दबा दें, कुछ महीने के अंदर वो एक कोंपल की सूरत में सर उठाने लगता है। इसके बरक्स उसी दाने को आप आग में डाल दें तो जल के राख हो जाएगा। शीशे के किसी बड़े खूबसूरत केस में उसको बंद कर दीजिए, ऐसे ही पड़ा रहेगा गले ना भी, लेकिन उससे कुछ पैदा नहीं होगा। तो आपको मुझे प्रोडक्टिव होना है। प्रोडक्टिविटी एक इंसान की बका है। इस दुनिया से जाने से पहले पहले पीछे अपने बीज छोड़ने हैं। एक इंसान के अंदर अगर मिट्टी की तरह से नमू और उसके अंदर से कुछ देने वाला मिजाज बन जाए तो फ़ायदा उसी को होगा। दूसरी चीज़ देखिए कि मिट्टी से आपने मैंने सीखना है ठहराओ। जमी भी मिट्टी होती है अपनी जगह पे, तो आप उसमें बड़ी बड़े घर खड़े कर लेते हैं। आपके इस घर या कई मंजिला बिल्डिंग का बोझ कितना होगा। मिट्टी क्यों बर्दाश्त कर लेती है, आप पानी पे घर नहीं बना सकते, आग पे बनाएंगे तो जल जाएगा, पानी के ऊपर खड़ा करेंगे तो डूब जाएगा, क्योंकि मिट्टी में ठहराव है। तो एक औरत और एक मर्द के मिजाज में, यानी मैं अगर मौजू को सामने रखते हुए औरत मर्द को शौहर बीवी कह दूँ तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि आज का हमारा सारा मौजू ही शौहर और बीवी है। तो शौहर और बीवी के मिजाज में मिट्टी की तरह जमाव होना चाहिए। जमे हुए लोग, ठुके हुए लोग, जब घर बस गया औरत का दिल मर्द से जम जाए, बस ख़त्म, यही था मेरे नसीब में। हो सकता है अम्मा अब्बा का इरादा कहीं और था, ख़ुद अपने लिए भी जहन में कुछ साल कुछ महीने किसी और का तसव्वुर आ गया, लेकिन अब नहीं। एक शादीशुदा ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ उसकी कामयाबी की दलील क्या है कि जहाँ आपका रिश्ता हो जाए आप वहाँ मुतमईन हो जाएं। जो आपकी बीवी बननी थी वो बन गई और जो शौहर आपको मिलना था वो मिल गया। आप इफ़्स एंड बट्स में पढ़कर जो मिला है उसको भी ज़ाया ना करें। नशुक्रापन इंसान से नेमतों की लज्जत और मिठास छीन लेता। बहुत सारे घरानों में खुशी और सुकून क्यों नहीं आ पाता, उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि वो अपने इस रिश्ते पे मुतमईन ही नहीं, अल्लाह के इस फैसले पे राज़ी नहीं। शादी नहीं हुई, जितना मर्जी सोचिए, जितनी मर्जी तहकीक कीजिए, अब हालात का तकाजा, वाक़यात, मम्मा अब्बा ने ज़बरदस्ती कर दी, दादी कह गई थी इधर रिश्ता करना और ये हो गया, अब जो भी रीज़न होनी थी अब हो गया, यही था आपका नसीब, इस पर राज़ी हो जाइए, इसके साथ घर बसते हैं। तीसरी चीज़ देखिए कि तुराब की बात शादीशुदा ज़िंदगी के साथ यहाँ कैसे जुड़ती है, कि अगर आप देखें तो मिट्टी बज़ाहर हल्की चीज़ लगती है, बट उसी में से बहुत कीमती फसलें मिल जाती हैं। शौहर के लिए बीवी मट्टी है और कुरान ने उसको क्या कहा कि निसाउ हर्सुल लकुम, बीवी तुम्हारे लिए खेती है। शौहर और बीवी का ताल्लुक किसान और खेती का होना चाहिए। ये दोनों के ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ इशारा है। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अव्वल आप उन आयतों की तफसीर सुन लें जाके किसी तफसीर सेट में, सबीलुल जन्ना में या नूरुल कुरान तफसीर में, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बस इतना समझिए कि शौहर और बीवी का ताल्लुक किसान और खेती का होना चाहिए, यानी बीवी खेती है तो मर्द जो है वो उसका फार्मर है। बज़ाहर औरतें माइंड करती हैं, हो हमें खेती बना दिया, हम कोई खेती है नहीं, क्या बनाएं। देख लीजिए वेस्ट ने औरत को क्या कहा, किसी ने फूल कहा, किसी ने चांद कहा, और किसी फिल्म में उसको तितली कहते हैं। यही है ना, गानों और फिल्मों में फिक्शन के ज़रिए से जो ताल्लुकात औरत मर्द के दिए गए। अगर चांद का ले लीजिए तो चांद को तो सारे देखते हैं, क्या मुश्किल है किसी को देखने में चांद को। तो जब औरत चांद का टुकड़ा बन के अपनी नुमाइश करती है तो किसी को कोई मसला नहीं, थोड़े दिन देखे एक दूसरा देख ले तो औरत की तो वो कीमत नहीं, सस्ती हो गई। जिस चीज़ को पैसे दे के या मेहनत करके देखें वो ज़रा कीमती होती है, तो औरत चांद नहीं हो सकती। अगर औरत चांद होती तो फिर उस चांद के चाहने वाले शौहर के साथ और भी बहुत हैं। आप कहते हैं चले फूल तो कहते आप हमें, कली कह दें, फूल कह दें, तो कली और फूल क्या है कि एक भंवरा कली कली का रस चूसता हुआ आपके ऊपर पास भी आ गया और खुशबू ले गया, रंग ले गया और उड़ गया। जितने दिन दिल चाहा उस भंवरे का वहाँ रहे फिर उड़ गया। आज औरत को क्या फूल बना के लोगों ने उस औरत का हुसन सस्ता नहीं कर दिया। हाँ अब आइए ज़रा इस्लाम की मिसाल पे, और तितली का भी कर ले, तितलियाँ बनी हुई औरतें जिसके दामन पे बैठे जिधर बैठे आखिर उनका मुकाम तन्हाई है। आज की औरत जब तितलियों की तरह उड़ के भागी इधर से उधर और 20-25 साल की उम्र में 5-6 पार्टनर बदल भी चुकी, तो इंजाम एंड पे 4-6 बच्चे लेके अकेली सिंगल मदर बन के वो सारे रंग रंग के बच्चों को पालती रहती है, और भंवरा उड़ गया और वो सारी रक्स चले गए। इस्लाम कहता है कि औरत खेती है, तो रब मट्टी है। कैसे, आप देखिए कि खेती से फसल लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ शौहर को एक ज़िम्मेदार शौहर का किरदार अदा करना पड़ता है। फिर आप देखिए कि किसान के लिए ज़मीन या खेती हमेशा कीमती होती है। कहते हैं ना कि दुनिया में जन ज़र और तीसरी भी ज़मीन, मट्टी ज़मीन और सोना हमेशा कीमती होता है। आपके पास कुछ नहीं, ज़मीन का एक टुकड़ा आपको कोई दे देता है, आप एक साल मेहनत कीजिए आप ज़मींदार बन जाएंगे, आपके पास हर साल की फसल तैयार है। तो मर्द के लिए बीवी कीमती होती है। फिर देखिए खेती से फसल मिलती है ना, तो बीवी से औलाद मिलती है। इस्लाम ने औरत को जो एज़ाज़ दिया एक मर्द के लिए कि वो उसके बच्चों की माँ भी है। फिर आप देखिए कि किसान सुबह सुबह उठता है और खेती की तरफ चल पड़ता है, मेहनत करता है, उसको बीज डालता है, उसको खोदता है और उसको पानी देता है। अहादीस में तो इतने क्लियर इशारे हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक मुबहम बात कर देती हूँ कि किसान जो कुछ मट्टी और ज़मीन के साथ करता है इस्तियारतन, ये सब कुछ शौहर को भी अपनी बीवी के साथ करना चाहिए और वो करता है। आपने फरमाया कि एकदम औरतों के पास मत जाया करो, पहले उनका दिल लुलझाया करो, उनको नरम किया करो, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें किया करो। सख्त ज़मीन पर बीज डाल देगा किसान तो बीज नहीं उगेगा। तो औरत से बच्चा हासिल करना ही एक मकसद नहीं है, पहले उसका दिल मोहो, उसकी भी तलब हो, फिर वो तुम्हें पास आने देगी, फिर उसको तुमसे खुशी मिलेगी, तुमको उससे खुशी मिलेगी। तो याद रखिए कि तुराब कहकर अल्लाह ने एक खूबसूरत कामयाब घराने की बुनियादें खड़ी कर दी। मिजाज में तुराब है तो ठंडापन, मट्टी ठंडी होती है। आपके घरों में अगर मट्टी का कोई बर्तन है देख लीजिए, रात को उसमें पानी रख दीजिए, सुबह पियेंगे फ्रिज के पानी से ठंडा होगा। मिजाजों में ठंडापन होना चाहिए, मट्टी की तरह बात को ठंडा पाओ, और पंजाबी उर्दू में कहते हैं मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। तो शौहर बीवी का ताल्लुक खूबसूरत कब होता है, जब उसमें मिट्टी पाओ वाला अंदाज होता है। और बहुत कुछ है इसकी आप तफसीर सुने, वहाँ बात की, अब यहाँ आपको मुझे समझ आ गई कि मट्टी कोई हल्की चीज़ नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज़ है। फरमाया सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरुन, फिर तुम बशर बनकर ज़मीन में फैल जाते हो। इसको सोचना हो तो आप ज़रा अपने आबाई घर को याद कीजिए, आपके कितने बहन भाई थे, हर एक अपना लिखे। ये मैं हमेशा करवाती हूँ एक्सपीरियंस इन आयतों पे जब भी मौका मिलता है। अमूमन लोगों के चार भाई, दो बहनें, दो बहनें, चार भाई, छह बहन भाई तो अमूमन होते ही थे। आपकी नानियों, दादियों या आपके माओं के ले ले, हम छह बच्चों की बात करते हैं। मसलन आप चार बहनें और दो भाई हैं, एक घर में पैदा हुए। अगर आपके वालिद किसी जगह स्टेबल पर्सन थे तो सारे एक ही गांव में, एक ही घर में पैदा हुए होंगे। किसी शहर में अगर जॉब करते थे तो आप सारे बहन भाई एक ही शहर में पैदा हुए होंगे। और अगर बहुत ही मूविंग थी, कोई फौज में थे या किसी गवर्नमेंट की जॉब में थे, तो हो सकता है कोई बहन लाहौर में पैदा हुई हो तो भाई कराची में हुआ हो, तो कोई सखर में हुआ, मुमकिन है ना। लेकिन है आप सब एक ही छत में थे। आप सोचे जब आप 8-10 साल की थी तो या तो आपसे ऊपर कोई दो तीन बहन भाई थे या नीचे होंगे। आप सब एक ही जगह थे, आपका एक ही एड्रेस था, वालिद के नाम के साथ सबके एक ही लफ्ज़ था। अब क्या हुआ? तन तशीरोन। आप इस वक्त कहाँ हैं? जो मेरे सामने है वो तो इस वक्त पेरिस में है, ऐसे ही है ना। आप अब लिखिए इस वक्त आपके बाकी भाई बहन कहाँ हैं। एक बहन अमेरिका पहुँच गई, एक यूके चली गई, एक दुबई में है, भाई जो हैं वो लाहौर में हैं, वो दूसरे भाई जो हैं वो समझें कि सऊदी अरब चले गए। ये है तन तशीरून। एक घर, एक छत के नीचे रहने वाले भाई बहन, एक रोटी खाने वाले, एक माँ के पेट से निकलने वाले, चंद सालों में पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। ये हम में से हर एक की कहानी होगी। और कोई बाहर के मुल्कों में नहीं भी गया तो अपने मुल्क के भी तो गली गली शहरों में, और अगर एक ही शहर में तो हर एक का घर तो अलग बन गया। ये फितरत का असूल है। अगर एक ही जगह हर दरख्त अपनी ही जगह पे साया दे तो बात नहीं फैलती। ये जो रिश्तों का डिफरेंट जगहों पे होना होता है, या शादी के बाद आप अपने शौहर के लिए कहीं मूव हो गई, आपकी बहन कहीं चली गई, आपकी भाभी अपना घर छोड़ के आपके भाई के पास आ गई, तो ये तन तशीरून की कैफियत क्यों है? ताकि मुख्तलिफ लोगों को जमा करके उनके फ़वाद लिए जाएँ। इसीलिए आप कहते हैं कि अपने ख़ानदान या अपने घर में शादी ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, पसंदीदा ही नहीं। आप ये हम इशू नहीं छेड़ सकते इस वक्त, कज़न मैरिज और ये वो और चचा और फलां के घर में शादी। नबी सल्लम को ही देख लीजिए, आपकी इजवाज को देखिए, शादियां कबीलों में हुई। आपकी एक बीवी हज़रत सफ़िया यहूदी नस्ल से थी, कहाँ से वो आई हैं इधर। इसी तरह देखिए कि हज़रत आयशा किसकी बेटी हैं, कोई किस कबीले का, कोई किस रंग का। कोई एक शादी आपकी सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं हुई कि चूंकि आप मेरे ख़ानदान से हैं, मेरी बरादरी से हैं, तो मैं आपसे ही करूँगा, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अगर हज़रत ज़ैनब से हुई भी, जो आपकी फूफीजाद बहन थी, तो वो कितने मुश्किल हालात से गुजार के हुई। तो हमारी शादियों का मेयार बिल्कुल फ़र्क है। लेकिन चलिए खैर आगे चलते हैं। फरमाया वमिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से है, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़्वाजल लितस्कुनू इलैहा, कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने बना दी तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत, यानी तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। और इसमें है कि इन नफी ज़ालिकल आयातिल लिकौमी यतफक्करून, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। ये है असल में कामयाब शादी का नुस्खा कीमिया। पहली बात देखिए कि कहा कि तुम्हारी हम जिन्स बीवियाँ बनाई, ये कितनी बड़ी नेमत है। हम जिन्स कौन होता है? यानी मर्द के लिए औरत, जिन्स एक है ना, इंसान, शेर के लिए शेरनी, चीते के लिए चीती, जो भी होगी। यानी आप इमेजिन तो कीजिए, शादी हो रही है और औरत की शादी हो रही घोड़े से, और मर्द के पहलू में बैठी बंदरिया। इंसान ने तो अब ये करना शुरू कर दिया, लकद खलक नल इंसान अफी अहसनी तकवीम सुम रदद ना हो असफल साफिलिन। इंसानों ने ये शुरू कर दिया है। मेरे पास पिक्चर कहीं अभी भी ईमेल्स में पड़ी होगी कि एक शख्स है और उसके पहलू में ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई एक कुतिया बैठी है, और वो उसके गले में हार फूलों के और जिसके गले में डाल रहा है। क्यों? खबर छपी थी, अखबार की खबर है, फला मुल्क में एक शख्स ने कुतिया से शादी कर ली। पूछने पे क्या ये क्यों किया? कहा असल में मैंने किसी जगह रात जाते किसी कुत्ते को ऐसे पत्थर मारा था कुछ अरसा पहले, उसके बाद मेरे ऊपर मुश्किल आने लगी, मेरे पास इतनी तकलीफें आईं कि मैं समझ गया कि कुत्ता भगवान से नाराज़ हो गया। अब उसको खुश करने का एक ही तरीका है कि किसी कुतिया से शादी करो। सुनी कभी आपने ये बातें पहले? ये है इंसान की नाशुक्री। लेकिन अल्लाह ने तो कह दिया कि अन खलक लकुम من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. شوہر اور بیوی کے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے اس سے خوبصورت جملہ نہیں ہے دنیا میں. آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کتنے جملے بولے نا, کیا کچھ کہا فلموں میں, ڈراموں میں, گانوں میں, فکشن میں, میڈیا پہ کس کس نام سے پکارا گیا. لیکن قرآن اس تعلق کی بنیاد کیا کرتا ہے, ہم جنسوں, یعنی آپ اپنے بیٹے کے لیے پری نہیں لا سکتی, سوری ٹو سے, یہ ماں بہنیں ہیں جو پریاں ڈھونڈتی رہتی ہیں تبھی تو رشتے نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے پری نہیں ملے گی, من انفسی کو لڑکی ڈھونڈو کیونکہ تمہارا بیٹا مرد ہے. بات سمجھ گئے؟ اب آپ کسی جنی سے شادی کرنے لگ جائیں بیٹے کی تو حالات کیا ہوں گے, اور آپ کی بیٹی کو بیاہنے کے لیے کوئی دوسری مخلوق نے نہیں آنا, کوئی فرشتہ نہیں ملے گا, انسان ہی ملے گا. تو پہلی بات تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے شوہر مرد ہیں اور آپ کی بیویاں عورتیں ہیں, ورنہ کمیونیکیشن کیسے ہوتی. دوسری بات دیکھیے, کیوں ہے شادی؟ یہ ہے شادی کا مقصد, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. آج آپ کسی سے بھی رات جاتے پوچھیں شادی کیوں کی جاتی ہے, واٹ از دا پرپز آف بینگ میرڈ, شادی کا مقصد کیا ہے, بہت بھی کوئی سمجھدار ہوگا نا کہے گا بچے حاصل کرنا, ایسے ہی ہے. تو آج کے بعد یہ جملہ مت بولیے گا. وائے؟ کہ شادی ہو بھی جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچے ہوں, اور دوسری طرف اگر شادی ہوئی اور بچے نہیں ہوئے تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا. کوئی کہتا ہے شادی کا مقصد یہ ہے کہ پیسے مل جائیں, مرد کماتا ہے, کھائے گا, پیے گا, دے گا, بیگم بن کے رہوں گی. اب شادی ہوئی, اللہ کے حکم سے مرد جو تھا وہ نہیں کما کھا سکا, نہیں اس کے پاس کچھ تھا, تو وہ عورت ناکام ہوئی. شادی کا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, شادی شدہ زندگی کا آخری ہدف جو سوسائٹی میں نظر آنا چاہیے, جو اس کا آفٹر آل ریزلٹ ہے, سکون. ایک عورت مرد کو پرسکون کیسے کرتی ہے؟ اس کے جنسی جذبات کو تسکین دے کر اس کو جذباتی طور پہ مطمئن کر دیتی ہے, اس کے لیے کھانا پکاتی ہے تو اس کے پیٹ کو پرسکون کر دیتی ہے, اس کے کپڑے دھوتی ہے, استری کرتی ہے, صاف رکھتی ہے تو اس کے ایتھیٹک سینس کو پرسکون کرتی ہے, اس کے آنے سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کرتی ہے تو اس کو سکون دیتی ہے, اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے, اس کو سکون دیتی ہے. ایسے ہی ہے نا, مرد بیوی کو سکون کیسے دیتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جیسے جوتی کا ایک پاؤں ہو اور دوسرا نہ ہو تو آپ اس جوتی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, ایک جراب یا ایک ساک ہو اور دوسری نہ ہو تو نہیں پہن سکتے. اس طرح مجرد لوگ, مجرد کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو اور وہ بیوی جس کا مرد نہ ہو, یعنی کمارے کہہ لیں یا رنوے کہہ لیں یا بیوہ کہہ لیں, یہ جو بھی لفظ, یعنی وہ شخص جس کا ساتھی نہ ہو, وہ سوسائٹی میں زیادہ کریٹو کردار ادا نہیں کر سکا. آپ کھول کے پڑھ لیجیے انبیاء کرام کی زندگی سے لے کر آج تک, ریلیجسلی, سوشلی, اکنامیکلی, بڑی بڑی شخصیات ہیں جس میں نیوٹن بھی آ جائے گا, جس میں آئنسٹائن بھی ہوں گے, جس میں ابراہیم بھی آئیں گے, جس میں سب سے بڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں بڑے کارنامے انجام دینے والے لوگ شادی شدہ لوگ تھے. جب ذاتی زندگی کی ذمہ داریاں احسن درجے سے پوری ہوتی ہیں, بھوک کے وقت میں بھوک پوری ہو جاتی ہے, جذبات کے وقت میں جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگ اپنی ذاتی زندگی سے اوپر اٹھ کر پھر انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ آج ذرا ویسٹ کی کچھ رپورٹس دیکھیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ آج ہمارے ملکوں میں بھی آنے لگ گیا, کہ وقت کے ساتھ لوگوں نے شادی کو بوجھ سمجھا. ویسٹ نے کیا نام دیا, کہتے ہیں جب بغیر شادی کے سب کچھ اویلیبل ہے تو بے وقوف ہے کہ ہم شادی کریں. اور میرے ساتھ خود ایک عورت کی ٹاک تھی, سویڈش تھی, وہ جہاز کے اندر ٹریولنگ کے دوران بات چیت ہوئی تو وہ مجھے اس بات پہ قائل کر رہی تھی کہ ڈونٹ وری, بوائے فرینڈ اور ہسبینڈ کے سیم رول ہے لیگلی سویڈن میں, یعنی اپنے ملک کا نام لے کے بتا رہی تھی. میں نے کہا میرج از اے سیکورٹی, تو کہتی ڈونٹ وری, نو نو, وہ میری بات نہیں سمجھی نا. اس کا ہیلتھ سیکورٹی سے مراد یہ ہے کہ تمہیں بینیفٹس ملیں گے. کہتی اب سویڈن میں ایک لڑکی اور لڑکا اگر بس کہتے ہیں ہم لیونگ ٹوگیدر کر رہے ہیں تو ان کو بیوی اور شوہر والے سارے بینیفٹس ملتے ہیں, یعنی وہ مر جائے تو یہ اور اس کی چیزیں اس کو ہے. تو میں نے کیا کرنی ہے شادی, اینی ٹائم یو کین لیو اٹ, جب دل بھر گیا چھوڑ دیں گے, جب بیمار ہو گیا چھوڑ دیں گے. شادی از اے ویری ہارڈ لیگل کانٹریکٹ. ایک طرف انہوں نے یہ کیا, نقصان کیا ہوا دیکھیے ذرا, جب آؤٹ آف ویڈ لاک بچے بن گئے دنیا میں تو حالات ہوئے, یہ ایک الگ ایشو ہے دنیا کا. हमारे मुल्कों में शादी मुश्किल कैसे हो गई? तलब तड़प तो है, ख्वाहिश तो है, 16 15 18 साल की ही बच्ची के माँ बाप को फिक्र लग जाती है, बट रस्मों रिवाज और चॉइस और कहाँ रिश्ता किया जाए, इस सोच ने बच्चियों को बड़ा कर दिया। लड़का ही नहीं पसंद है, और जब लड़की पड़ गई फिर तो दुनिया में कोई है ही नहीं मेरी बेटी के लेवल का, है कि नहीं? 20 साल की उम्र तक रिश्ता हो जाए तो हो जाता, जो बच्ची ज़रा 20 22 से ऊपर गई, यदि कह लें कि यूनिवर्सिटी में गई, अब रिश्ते तो हैं पर माँ बाप की नज़र कमज़ोर हो जाती है और बच्चों की भी। मेरी इतनी पढ़ी लिखी बच्ची के काबिल है ही कोई नहीं जिसको मैं ये चांद का टुकड़ा दूँ। होश कब आती है जब बेटी की नाम के साथ 30 का लफ्ज़ लगने लगता है। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। वक्त पे शादियों का करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें एडवाइस, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मारूफ रिवायत में आपने ये बात कही कि अली तीन चीज़ों में देर ना करना, फ़र्ज़ नमाज का वक्त आ जाए तो उसकी अदायगी में, कोई फौत हो जाए तो उसके कफन दफन में, और जब कोई मर्द जो औरत तनहा हो तो उसकी शादी में, इवन दूसरी शादी, क्यों? इसके अलावा फितना होगा। और आपने फरमाया बेटियों के बापों और भाइयों को, यानी जो भी उनके वाली होते हैं, उनको एड्रेस किया, जब तुम्हारे पास किसी नेक शख्स का पैगाम आए, मन तर दो ना दीना हु व खुलुका हो, दो चीज़ें हैं, एक माँ बाप के पास क्राइटेरियन, उसका दीन देखो, ये तो बहुत देखते हैं माशाल्लाह, बट फिर क्यों ख़राब हो गया रिश्ता? क्योंकि खुलुक नहीं देखा था, अखलाक नहीं देखा था, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है, आज दीन के नाम पे फिकही वैसे करने वाले बहुत, रफुल जदैन करे ना करे, नमाज होती के नहीं बहुत, ऊंचा सजदा नीचा सजदा, फातिहा सूरत पढ़ो के नहीं, उसके बाद आमीन कहो के ना, इस बुनियाद पे आज उलमा के गले बेचारों के खुश्क हो गए लोगों को समझाते हुए, और फ़िरका वारियत इतनी जन्म ली कि हक वाले हक पे होते हुए भी नाकाम है और बातिल वाले बातिल पे होके भी अकड़ रहे हैं, लेकिन नहीं कोई बात करता तो मामलात पे बात नहीं करता। ये जो मैंने दो तीन फिकी इशू बोले हैं ना, ये हमारे माशरे के पेट जुमले हैं। किसी नए शहर जाऊँ तो दो चार जुमले कोई इसके बारे में पूछे ना सवालात, तो मैं समझ जाती हूँ ये आया नहीं, इसको भेजा गया, ज़रा आए हैं, ज़रा उनसे ज़रा पूछ के आना, कज़ा उम्री होती है औरत और मर्द की नमाज का, ताकि पता लग जाए ये बाजी का अकीदा देखने आए हैं कि ये हैं कौन है, ना कब्र में ना हशर में ना पुल सरात पे, इनमें से एक भी सवाल नहीं होना। हनफी हो, शाफी हो, मालकी हो, हम्बली हो, क्या हो, अल्लाह ने क़यामत के दिन चारों इमामों को खड़ा करके रुसवा नहीं करना, नऊज़ु बिल्लाह, कि किसके साथ थोड़े तो किसके साथ ज़्यादा थे। बट जिस बात पे लोगों की जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला होना है वो अखलाक है, वो मुआमलात है। अद्दीन अल मुआमला, दो लफ्ज़ों की हदीस है। दीन तो असल में मामले का नाम है, सबसे मुश्किल पर्चा मामलात का पर्चा, और उससे भी भड़के अगर मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है, और आपने फरमाया मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतरीन हूँ। यानी जन्नत में जाने या ना जाने का फ़ैसला एक तो आपके मेरे अकीदे से होना है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस पे गिरा कितनी मजबूती, लेकिन इसके पैरेलल दूसरी चीज़ हमारे हमारे घर वालों से मुआमले, बीवी को पाँव की जूती समझा, बीवी पे शक किया, बीवी के साथ तंग नजरी की, या फिर बीवी को खुले ही छोड़ दिया, तू जो मर्जी कर, मैं बड़ा लिबरल मर्द हूँ, ये दोनों गलत हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे मौका मिले ना दोबारा से ज़िंदगी का आगाज़ का, और जो मेरे इर्द गिर्द लोगों, मैं सबसे पहले उनको मामलात सिखाऊं। शौहर बीवी का इशू आज के दौर का पेट जुमला बन चुका है। कल इत्तफाक मेरे साथ ऐसे होते हैं, लेकिन अल्लाह की उसमें हिकमत होती है। मैं किसी जगह बैठी थी किसी इंतज़ार में, तो उनके पास टीवी चल रहा था, कुछ भी होगा, आवाज़ बंद थी या हल्की थी, जो भी, वहाँ कुछ ड्रामों के क्लिप्स दिखा रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मैं साथ फ़ोन पे भी थी, लेकिन जो बात मैं आपको बताने चली वो डिफरेंट ड्रामों की हाईलाइट्स थी कि उस दिन ये पे होता है, उस दिन ये होता है, और जो मेरे कानों ने, जो लफ्ज़ों पे मेरे कान उधर खटके, वो लफ्ज़ तलाक था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ड्रामे के किरदार हैं, मेरे नसीब में तुम नहीं थे, फलां नाम लेके लड़की कह रही है मेरे नाम के साथ ये नहीं वो लगना चाहिए था, वो उधर कह रही है तुम इसके साथ रह लो कुछ नहीं। यानी दो तीन मुख्तलिफ ड्रामों की झलकियाँ थी, एक दो मिनट तीन की बात है ये, और उसमें हर मुख्तलिफ ड्रामे के थीम में लफ्ज़ घर टूटता था। मैं देखती नहीं हूँ, मौका ही नहीं है और ज़रूरत ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मीडिया पे तो हमेशा वही चीज़ें आती हैं जो सोसाइटी के इश्यूज़ होते हैं, तो आज हमारे ड्रामों के अंदर मेन इशू तलाक, घर टूटना क्यों दिख रहा है? मिजाज में मिन तुराब होना नहीं है। आज वो माँ बाप मुजरिम है, लिख लीजिए ये जुर्म है, मैं बड़े यकीन से कहूँगी, मुजरिम है जो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उसको वो ली तस्कुनू इलई हा का सबक नहीं पढ़ा के भेजते। तरबियत में वो रंग ही कोई नहीं कि वो वहाँ जाके मट्टी में मट्टी बन जाए, मट्टी की तरह प्रोडक्टिव हो, खेती की तरह कीमती हो। आज हम अपनी बेटियों की तरबियत बेटों की तरह करते करते एकदम उनके हाथ पीले कर देते हैं, जो अब जाके धक्के खाओ। और फिर वहाँ जाके वो हमारा जो नाम रोशन करती हैं, अल्लाह की पनाह और अल्लाह की पनाह और अल्लाह की पनाह। आप जिस भी मुल्क में बैठे मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, बगैर ड्राइविंग सीखे ड्राइविंग सीट पे बैठकर गाड़ी बाहर ले आना जुर्म है। ऐसे ही है ना, पेरिस में भी ऐसे ही है ना, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, सऊदीया में, हर जगह ऐसा होगा। आप बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं कर सकते। आप कोई दुकान खोल सकते हैं गवर्नमेंट से अप्रूवल लेटर लिए बगैर? आप मस्जिद बना सकते हैं या आप कोई दीनी इदारा बना सकते हैं लीगलाइज तरीके से लिए बगैर? नहीं कर सकते। शादियां आप जितनी मर्जी करें, बच्चियों की और बच्चों की। अफसोस के साथ पिछले सबक के साथ इसको जोड़िए, बच्चों की तरबियत में आप जो काम करते हैं उसमें सबसे पहले बेटे को शौहर बनना सिखाएं और बेटी को बीवी बनना सिखाएं। ये है ली तस्कुनू इलैहा। और इसके लिए मिजाज की नरमी, सहूलत, आजजी, मोहब्बत और अपना हक भी लेना। या तो दबती जाती हैं हर बात में, जो शौहर का फैसला वो मेरा, जो अम्मा ने कहा वो ठीक, जो सास ने कहा वो ठीक, वो भी बेवकूफ़ लड़कियां होती हैं। अल्लाह के सारे इख्तियारात में से ज़्यादा शौहरों को ही दे देती हैं, हत्ता के प्लकिंग तक शौहर की खुशी से ही करती हैं, ये भी गलत है। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही बदमिजाज और अक्खड़ और कहने लगी तू कौन और मैं कौन, एक प्लेट मैंने धोई अब दूसरी तू दो, ये भी मिजाज फ़र्क है। आज घर क्यों टूट रहे हैं कभी आप सोचिएगा? घर इसलिए टूटते हैं कि लड़की को लड़की बनाकर नहीं पालते हम, या कम अज़ कम लड़की तो वो है लेकिन वो बीवी बनने के लिए तैयार नहीं, वो उसकी अपनी गाड़ी की चाबी। यूँ लड़कियाँ घुमाती हैं अपना की रिंग, आई हैव माई ओन कार, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा पर्स है। किसी से बात हो रही थी, शादी हुई, मसले उठे, मैंने कहा ये बताओ कि फाइनेंशियली हस्बैंड कैसे हैं? यानी अक्सर मैंने अपने मुल्कों में जो मसला देखा है मियाँ बीवी की लड़ाइयों का, उसमें 60-70% झगड़ा पैसों का होता है। बीवी पैसे मांगती है, मियाँ देता नहीं, ऐसे सुना होगा आपने भी, तंग है, खर्चा नहीं देता। फिर बीवियाँ पैसे मांगती है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, ईद आ गई है, इसी पे झगड़े होते हैं। पाकिस्तान के झगड़े जितने को हमने सुने वो मोस्टली यही थे। मैंने फिगर आउट करना चाहा कि ये जो शिकवे पेश कर रही है अपने शौहर के, तो मैं देखूँ कि मियाँ कवाम है भी कि नहीं, बीमा फद्दलल्लाहुलआबाद इनकी कैफियत में पैसे लगाता है कि नहीं। कहती आई डोंट नीड हिज मनी, यानी जो उसकी लैंग्वेज, तो उसने कहा मुझे उसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने नहीं कभी उससे पैसे मांगे, मेरा अपना कार्ड है, जॉब करती थी शादी से पहले भी। मैंने कहा बस यहीं रुक जाओ, पहला मशवरा फिर तुम्हें मैं आज यही दूंगी कि अपने खर्चे पानी के लिए शौहर से पैसे मांगो। जब आप उसे लेती नहीं है तो आप दबती नहीं है, और जब आप उसे लेती नहीं है तो उसको फिक्र ही कोई नहीं कि फिर आप जी रही हैं और आप बच्चा है तो इसका कौन देगा। हम तो खुद मर्दों को आज़ाद कर देते हैं, जाओ पैसों की तुम्हारी ज़रूरत नहीं, नहीं ज़रूरत है मुझे, आपके अपने पैसे हैं उसको सदके में दीजिए, आप अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, मस्जिदों में दें, दीन पे लगाएं, अपने घर के खर्चे के पैसे मर्द से लें, ये अल्लाह ने उसको दिया काम, आप नहीं ले सकती। तो बात समझ आ गई है, जब कमाती खाती गुनगुनाती लड़कियां बीवियां बनाकर भेज दी जाती हैं तो वो ली तस्कुनू इलैहा में कमी रहती हैं।